जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरंजन, यशोदानन्दन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरंजन, यशोदानन्दन व्रज जनरंजन, य यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेश तमय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वृंदावन की गोपियां युगल गीत में श्री कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 35वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक की, जिसमें कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण एक वनमाला को पहने हुए हैं परंतु एक आपीड़ के रूप में। सिर के चूड़े में उन्होंने इस माला को बांध लिया है और वो श्री राम या बलराम के साथ गोवर्धन के ऊपर हैं या गोवर्धन के ऊपर चल रहे हैं और अपनी वेणु बजा रहे हैं, जिससे कि सारा विश्व प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि दोपहर का समय है, मध्याह्न का समय है, तो धूप कड़ी होती है, तो श्री कृष्ण के एक मित्र हैं और वो है मेघ या बादल। वो देखते हैं कि मेरे मित्र को कष्ट हो रहा है धूप के कारण, तो वो वृष्टि करते हैं पुष्पों की, अर्थात शीतल जल की, साथ साथ में वो ऊपर से आके छाया प्रदान करते हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते जब चलते हैं तो इस छाया का आनंद लेते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ गोपियों ने बादल को श्री कृष्ण के सखा कह के क्यों पुकारा है। दो चीजें हैं, एक तो दोपहर के समय जब धूप कड़ी होती है, बहुत गर्मी होती है, पीड़ा होती है सभी प्राणियों को, अकस्मात जब बादल छा जाते हैं आसमान में तो सभी को उस धूप से राहत मिलती है। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में सभी बद्ध जीव पीड़ित हैं त्रिविध तापों से, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, नाना प्रकार के कष्टों को बद्ध जीवों को झेलना पड़ता है निरंतर इस भौतिक सृष्टि में। संसार दावा नल नीढ़लोका तृणायकारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवर्जम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये गुरु की महिमा है। बताया जाता है कि श्री गुरु बादल के समान हैं, जो भगवान रूपी समुद्र से खींचते हैं कृपा और फिर बरसाते हैं सभी बद्ध जीवों के ऊपर, जो कि यहाँ तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं त्रिविध तापों से। ये संसार की तुलना एक दावानल से की गई है। जब तक यहाँ तरह तरह के कष्ट रहेंगे, कोई भी सुखी या शांत नहीं रह सकता। तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की प्रतिनिधि जो सद्गुरु होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके ही ये त्रिविध तापों की जो प्रज्वलित अग्नि है, जो हमारे हृदय में जल रही है, उसका शमन हो सकता है। तो जिस प्रकार से बादल कड़े धूप से राहत दिलाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी भौतिक सृष्टि के कष्टों से हमें राहत दिलाते हैं, जब हम उनके शरण में जाते हैं। तो इस तरह बादल और श्री कृष्ण एक जैसे हैं। और समानता का दूसरा कारण ये है कि दोनों का रंग एक जैसा है। बादल सांवले हैं और श्री कृष्ण भी सांवले हैं। वैसे श्री कृष्ण की शरीर की कांति का वर्णन करते हुए अवश्य जलधर या मेघ का वर्णन होता है। जयति जयति देवकी नंदन सो जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। महाराज कुलशेखर कहते हैं, जय हो उस कृष्ण का जिनको देवकी के पुत्र के नाम से पुकारते हैं लोग। ऐसे कहा गया है कि वो देवकी के पुत्र हैं। वैसे भगवान किन के पुत्र हो सकते हैं? वो तो सभी के माता हैं, सभी के पिता हैं, सभी के सब कुछ हैं। इसलिए देवकी नंदनस्सो ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। तो ये किसी का पुत्र होना ये श्री कृष्ण की लीला है। वास्तव में देखा जाए तो तत्वतः वो किसी के पुत्र नहीं है, परंतु पुत्र बनना पसंद करते हैं क्योंकि वो वात्सल्य रस का आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं। जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि वंश के प्रदीप हैं, उन्होंने वृष्णि वंश को विख्यात बना दिया है, प्रसिद्ध बना दिया है। ऐसे बताया जाता है कि कभी कभी एक व्यक्ति किसी बड़े परिवार में जन्म लेता है तो वो व्यक्ति बड़ा माना जाता है क्योंकि उसका नाम बड़ा होता है, बड़े कुल से उसका नाम जुड़ा हुआ होता है। परंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण का वंश जो है, जिस वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए वो वंश प्रसिद्ध हो गया। मलय चंदन, जहां इस प्रकार का चंदन मिलता है तो वो वन प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से चंदन रूपी कृष्ण जहां प्रसन्न जहां प्रकट होते हैं तो वो सारा वंश सुगंधित हो जाता है चंदन के समान। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, तो जय हो उस श्री कृष्ण का जिनका शरीर बड़ा कोमल है। हालांकि जब असुरों का वध करते हैं तो उनका शरीर कोमल होते हुए भी वज्र से भी अधिक कठोर होता है। वज्रादपि कठोरानि कुसुमादपि कोमलम, तो वज्र से भी कठोर हो सकते हैं श्री कृष्ण, और कुसुम या एक फूल के पंखुड़ी से भी अधिक कोमल हो सकते हैं। तो कोमलांग है, मेघ श्यामल है, तो मेघ रंग, मेघ श्यामल, श्याम मतलब सांवला, तो मेघ के समान श्री कृष्ण का सांवला रंग है। तो ऐसे सांवले रंग वाले श्री कृष्ण का जय हो। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद है, तो जय हो उस मुकुंद का, उस कृष्ण का जो कि पृथ्वी के भार को कम करते हैं। तो ऐसे जगह जगह देखा जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर की कांति की तुलना बादल से की गई है। जैसे उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, जयदेव गोस्वामी ने भी गाया है, अभिनव जलधर सुंदर हे, अभिनव जलधर सुंदर हे। अभिनव मतलब अभिनव जात, एक वर्षा के मौसम के बादल के रंग जैसा होता है वैसे ही श्री कृष्ण की शरीर की कांति होती है। तो इस तरह बादल और श्री कृष्ण में ये समानता है, और जब कोई समान समान होते हैं तो मित्र होते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बादल भी इस कारण से श्री कृष्ण के सखा हैं, और इसलिए अपने सखा को सखा की सेवा करना चाहते हैं बादल। तो बड़े मधुर ढंग से गरजते हैं बादल, अपने स्वाभाविक गरजने की का जो ढंग होता है उसको त्याग के बहुत मधुर ढंग से ताल में ताल मिलाते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी से, और ऐसे गरजने लगते हैं बड़े ताल में। तो ऐसे वर्णन करके अब गोपियां वर्णन करने जा रही हैं श्री कृष्ण के बांसुरी वदन की, और साथ साथ में इस बांसुरी के वदन का क्या असर देवताओं पर होता है। एक दिन हुआ ये कि श्री कृष्ण को देरी हो गई लौटते समय। कभी कभी ऐसे हो जाता था क्योंकि दूर वन में जाते थे, गवों को चराने जाते थे, कभी गाय इधर उधर घूमते रहती थी, श्री कृष्ण को उनको बुलाना पड़ता था, श्री कृष्ण को घेर के खड़े हो जाती थी सारी गाय, श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी, सारे ग्वाल बालों को पास में आना पड़ता था, बड़े मुश्किल से गायों को श्री कृष्ण से अलग करते थे। गाय श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो जाती, कोई चाटते जो पास में खड़ी होती वो चाट लेती श्री कृष्ण के शरीर को, कोई इनके शरीर को सूंघ लेती, कोई दूर से ही बस उनको अपने अंतःकरण में आंखों के द्वारा स्वीकार कर लेते। तो खैर, बड़े कठिनाई से ग्वाल बाल गायों को अलग कर लेते और कहते चलो चलो ही करके, ही धवली ही गंगा करके भेजते थे वापस, आवाज करके ऐसे फिर वापस उनको ले जाते थे। तो कभी कभी ऐसे देर हो जाती थी, तो जब देर होती थी तो नंद महाराज, माता यशोदा और बल्कि सारे ब्रजवासी बड़े चिंतित रह जाते थे कि कृष्ण नहीं आए, क्या बात है। क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई असुर आते थे वहां पे वृंदावन में, आपको तो पता ही है, तो चिंता का कारण भी था। तो नंद महाराज अपने घर के ऊपर छत पे जाते थे और उस समय ब्रज में ऐसे घर बनाए जाते थे कि छत के ऊपर भी एक और ऊपर कुछ एक शालिका होती, चंद्रशालिका जिसे कहते हैं। तो उस चंद्रशालिका में ऊपर जाके वो दूर देखते, जिस दिशा में श्री कृष्ण के लौटने की संभावना होती थी तो वहाँ उस दिशा में वो देखते थे। और जब श्री कृष्ण को देखते, सबसे पहले थोड़ा बहुत धूल देखते। धूल क्यों? गोधूली का समय, इसलिए समय ये शब्द आया है गोधूली। सायंकाल के समय को गोधूली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय गाय वन से वापस गांव में चली आती हैं और सैकड़ों हजारों गाय होती हैं और उनके खुरों से वो चलते चलते वो धूल ऊपर उखाड़ते हैं, तो सारा आसमान जो सारा वो हवा धूल से भर जाता है। तो सबसे पहले ऐसे मानो कि कोई बस धुंध हो गया है, तो नंद महाराज समझते थे कि धूल अब दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि गाय आ रहे हैं और पीछे पीछे अवश्य कृष्ण होंगे। और फिर धीरे धीरे से कृष्ण दिखाई पड़ते थे। सबसे पहला उनका मोर पंख ऊपर से, आपीड़ बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। तो उनको बरहा पीड़म, वो सिर का मोर पंख दिखाई पड़ता था। और फिर नंद महाराज बड़े हर्षित होकर माता यशोदा के पास जाते थे, अरे तुम्हारा लाडला आ रहा है देखो। और माता यशोदा भी प्रसन्न होकर फिर श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहती, सारे ब्रज में हलचल पैदा हो जाता, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। ये रोज की बात है कि सारे ब्रजवासी उस समय की प्रतीक्षा करते, अपने सांस को रोके हुए प्राय कि कब श्री कृष्ण लौट के आएंगे। त्रुटि युगायतिम त्वाम अपश्यताम, गोपियों ने दूसरी जगह में भी कहा हुआ है गोपी गीत में, अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, कि हे कृष्ण जब आप वन में चले जाते हो दिन के समय, तो एक त्रुटि काल, त्रुटि मतलब एक क्षण से भी कम समय की अवधि होती है, एक त्रुटि भी हमें एक युग के समान अर्थात 12 वर्ष के समान प्रतीत होता है जब हम आपको देख नहीं सकते हैं। त्वाम अपश्यताम, तो इतना तीव्र ब्रजवासियों का प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति कि सुबह से शाम का समय बड़े मुश्किल से बीतता था। केवल वो श्री कृष्ण का गुणगान निरंतर करते रहते एक दूसरे के संग में कि थोड़ा बहुत उस विरह को वो सहन कर पाते, अन्यथा ये संभव नहीं होता। अगर साथ में उनके अन्य ब्रजवासी न होते और परस्पर वो कृष्ण की कथा दिन भर न करते रहते तो शायद इस विरह को वो सहन नहीं कर पाते। और शाम का समय जब हो जाता था तो बड़े आतुरता से सारे ब्रजवासी राह देख रहे होते हैं और खबर फैलती है तो सारे ब्रजवासी दौड़ के शरीर के गांव के कोने पे पहुंच जाते हैं सीमा पर, और गोपियां भी आ जाती हैं। तो घटना इन दो श्लोकों में ये है, प्रसंग ये चल रहा है कि एक दिन ऐसे ही श्री कृष्ण को देरी हो गई तो सभी लोग चिंतित थे। तो सारी गोपियां जो कि युगल गीत गा रही हैं, वही गोपियां हैं जिन्होंने गोपी गीत भी गाए और वेणु गीत भी गाया था, तो वो माता यशोदा के घर में जाती हैं। माता यशोदा तो चिंतित है ही, और वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी कुमारियाँ हैं, साथ साथ में गोपियाँ भी हैं, अन्य जो वरिष्ठ गोपियाँ हैं जो कि कृष्ण के बारे में बातचीत कर रही हैं। तो ये गोपियाँ वहाँ जाती हैं माता यशोदा को सांत्वना देने के लिए कि हाँ, श्री कृष्ण को लौटने में देर तो हो गई, लेकिन चिंता नहीं करना, आ तो जाएंगे। और साथ साथ अपने हृदय के कष्ट कठिनाई को भी वो थोड़ा मिटाना चाहते हैं ऐसे कृष्ण का गुणगान करके। तो ये चित्र है हमारे आंखों के सामने कि माता यशोदा के घर में सारे गोपियां गई हैं और जाके ये माता यशोदा को संबोधित करती हैं। तव सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुर अनयत स्वर जाती ही। तव सुतः सती, हे सती, सती मतलब जब कोई पतिव्रता स्त्री होती है तो उसे सती कह के आदर पूर्वक सम्मान किया जाता है। तो माता यशोदा को सती कह के सारे गोपियां संबोधित कर रही हैं। तव सुतः सती यदा, आपका पुत्र हे सती, हे माता यशोदा, यदा जब अधर बिंबे, अपने अधरों पे जो कि बिंब फल के समान लाल हैं, बिंब फल बिंब सदृश होठों पर जो कि लाल रंग हैं उस पे दत्त मतलब रखते हैं वेणु हो अनयत स्वर जाति ही, और वो तरह तरह के ताल में वेणु बजाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ऐसे खोज निकाले हैं उन्होंने तरह तरह के ताल और स्वर कि इसके बारे में हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो हे माता यशोदा, आपका ये जो पुत्र है श्री कृष्ण विविध गोप चरणेशु विदग्ध है। विविध गोप चरणेशु, गोप चरणेशु, गोपों का काम क्या होता है? गवों का देखभाल करना। अब आप में से जिन भक्तों ने गाय का देखरेख किया होगा, आपको पता है कि गाय के देखरेख में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। गाय को खिलाना पड़ता है, गाय का दोहन करना पड़ता है, कभी कभी गाय को नहलाना पड़ता है। जब गाय आपस में झगड़ती हैं या बैल झगड़ते हैं तो क्या करना है वो भी जानना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए क्या उचित है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए ये भी जानना चाहिए। अनेक चीजें हैं। तो श्री कृष्ण इन कलाओं में बड़े सक्षम हैं, बड़े निपुण हैं और सब कुछ जानते हैं, गाय का दोहन कैसे करना, गाय का देखरेख कैसे करना। तो गोप चरणेशु, तो गोपियां कहना चाहती हैं कि जो भी गोपों के लिए गाय के देखरेख करने की जो कलाएं हैं, ये आपका पुत्र हे यशोदा माता बड़ा निपुण है इन सब में। विदग्ध, विदग्ध मतलब बहुत ही प्रवीण है, इसलिए तो ये गोपाल चूड़ामणि हैं, गोपालकों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके जैसे कोई कला नहीं है। इसलिए तो गौएं जो है श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं। बल्कि प्रातः काल में जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है ये गाय दूध नहीं देती हैं। इसलिए श्री कृष्ण को उठना पड़ता है, फिर जब तक वो गोष्ठ में नहीं जाते हैं तो तब तक गाय असंतुष्ट रहती है, क्योंकि गायों को भी दिन भर संग तो मिला था लेकिन रात भर संग नहीं मिला। और इसलिए गाय भी आतुर रहती हैं, बड़े विचलित रहती हैं कि कब प्रातःकाल होगा, कब हम जाएंगे श्री कृष्ण के साथ। तो तरह तरह के भावनाओं से कृष्ण की सेवा होती थी, कृष्ण की से प्रेम होता है वृंदावन में। तो जो गाय हैं वो अधिकतर वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, कोई दास्य भाव भी इसमें मिश्रित है। तो गाय श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि जब तक श्री कृष्ण सामने आए वो चरने के लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण सुबह को प्रातः काल को चरने के लिए तैयार होते हैं तो पहले श्री कृष्ण को आगे चलना पड़ता है, फिर गोपियों को थोड़ा आश्वासन मिल जाता है कि हाँ श्री कृष्ण है तो चलो हम साथ में चलते हैं। तो गौओं का प्रेम श्री कृष्ण के साथ इतना तीव्र होता है, इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण आते हैं तो बस वो दूध देना प्रारंभ करती है। वैसे कई श्री कृष्ण के गायों के दोहन करने की लीलाएं तो अनेक हैं। टेर कदम्ब, जिसके बारे में हम कल या परसों चर्चा करेंगे, इसके बारे में आप तो सुना ही होगा। टेर कदम्ब एक स्थान है जो नंदग्राम और यावत के बीच में है। नंदग्राम नाम के स्थान में श्री कृष्ण रहा करते थे और श्रीमती राधा रानी का विवाह जब हुआ, तथाकथित विवाह अभिमन्यु से, तो वो रहती थी यावत नाम के स्थान में जो कि थोड़ी दूरी पर था नंदगांव से। तो वहां पास में ही टेर कदम्ब है। नंदग्राम में रह के श्री कृष्ण ने सख्य रस का आस्वादन किया और बल्कि माधुरी रस का भी अधिक आस्वादन उन्होंने वहां किया। जब श्री कृष्ण की कुमार अवस्था होती है तो गोकुल में वो वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, जब छटिकरा वृंदावन में वो जाते हैं तो सख्य रस का स्वाद लेते हैं, और नंदग्राम में जाने के बाद फिर माधुर्य रस का स्वाद लेते हैं आयु के हिसाब से। कुमारावस्था में, जब बाल्यावस्था में, बच्चा तो केवल अपने माता को ही, माता पिता को ही जानता है। जब थोड़ी आयु बढ़ जाती है तो अपने मित्रों को पहचानने लगता है बच्चा, क्रीड़ा में बहुत रुचि लेता है। तो श्री कृष्ण इस समय अभी पौगंड अवस्था को प्राप्त करके बड़े गांवों को ले जाते हैं वन में, और इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक महीने में आती है, जिस दिन पर श्री कृष्ण जो कि पहले छोटे बछड़ों को ले जाते थे चरने के लिए, अब वो बड़े गवों को ले जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर जब अपने मित्रों के साथ वन में जाते हैं तो तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, और थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब 10 साल की आयु हो जाती है तो फिर आकर्षण गोपियों के प्रति होने लगता है। तो उस समय तो वो नंदगांव में चले जाते हैं। नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी सदैव श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे, तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि गोकुल में इतने सारे खतरे हैं, पूतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, तरह तरह की समस्याएं आईं, तो चलो हम चले जाते हैं वृंदावन। तो वृंदावन आके बसे थोड़े वर्ष, लेकिन वहां पर भी कितने सारे असुर आए, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब नंदगांव चले जाते हैं, तो नंदगांव चले गए। वैसे गोकुल के पहले नंद बाबा नंदगांव में ही रहा करते थे, उनके पिता महाराज परजन्य वहां रहा करते थे। अनेक वर्षों पूर्व महाराज परजन्य यहां पर आकर बसे थे, लेकिन यहां से फिर नंद बाबा चले गए थे गोकुल, अब वापस नंदगांव लौट के आए। तो श्री कृष्ण अपने गौओं को चराते चराते इधर उधर जाते, और शाम का समय जब होता तो वो टेर कदम के पास आते। तो टेर कदम में वो जानते कि गोपियां जाएंगे, क्योंकि माता यशोदा ने राधा रानी से निवेदन किया था कि तुम आना जरूर और श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाना। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि का वरदान मिला था कि जो भी वो पकाएगी वो अमृत के समान स्वादिष्ट होगा, और अमृत का ये भी गुण है अमृत पान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु से भी बचाता है। तो माता यशोदा चाहती थी कि श्रीमती राधा रानी मेरे कृष्ण के लिए अवश्य भोजन बनाए। तो जाती थी श्रीमती राधा रानी अपने सखियों गोपियों को लेकर साथ में, लेकिन कभी कभी वो देखती थी उनकी गोपियाँ उनको चेतावनी देती थी, देखो यहाँ इस तरफ से जाओगे तो यहाँ थोड़ा धोखा है, क्योंकि यहाँ एक काले रंग का सांप है जो तुम्हें डसने के लिए बैठा है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो तो फिर श्रीमती राधा रानी कहती हम थोड़ी डरते हैं किसी सांप से, फिर आगे चलते थे। तो वृंदावन में ऐसी सब भाषा है, ये आप तिरुपति में नहीं देखेंगे। कोई भगवान के तिरुपति बालाजी के बारे में ऐसे नहीं बात कर सकता, सिंहाचल में नरसिंह देव के बारे में कोई जिसकी मजाल हो ऐसा बात करे, औकात हो किसी की कि नरसिंह देव के बारे में ऐसे बात करे, नहीं। लेकिन वृंदावन में ये मिठास ऐसे बातचीत होती थी ब्रजवासियों के बीच में। तो श्री कृष्ण वहाँ खड़े हैं, उनको पता है कि ये समय हो गया गोपियों का आने का, तो जानबूझकर रास्ते में गवों को खड़ा करके उनका दोहन करने लगते हैं और घुष्ण 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 ऐसे आवाज आती है, घुष्ण 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 घुष्ण। आप में से जिन्होंने देखा है गाय का दोहन होते समय ऐसे आवाज आती है, जब दूध फिर नीचे बाल्टी में आके गिरती है या पात्र में तो ऐसे आवाज आती है, तो घुष्ण 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 करके ऐसे जब दूध का आवाज आ रही है तो उधर से गोपियां आती अचानक रुक जा, देखती हैं कि कृष्ण है, लेकिन ऐसे प्रति ऐसे कर रहे हैं कि हमने कृष्ण को देखा ही नहीं है, आगे चल रही हैं कि कुछ होगा नहीं, चलो चलो। ललिता सखी साथ में है, राधा रानी को बोल रहे हैं कोई चिंता नहीं करना, चलो हम साथ में हैं, कोई सांप नहीं डसेगा जब तक हम हैं। आगे चलते हैं तो श्री कृष्ण मानो कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आए हैं, लेकिन आंखों के कोने से सब देख रहे हैं कि कौन आ रहे हैं। और दोहन करने करते वो अपना गीत गाते गाते दोहन कर रहे हैं, घुष्ण घुष्ण कर रहे हैं, और जैसे ही गोपियां पास में आती हैं तो तुरंत वो इस प्रकार से गाय के तनों को की दिशा बदल देते हैं कि एक पिचकारी जैसे गोपियों के ऊपर दूत कर चले जाता है। फिर गोपियों के बीच में चीख होती, चीखने लगती हैं सारे गोपियारे रे रे, सब दूत सारे शरीर पे आ गया। फिर श्री कृष्ण उस समय उठते गायों के पीठ पे ऊपर एक ऐसे थप्पड़ मारते तो गाय डर के गोपियों के बीच में इधर उधर भागने लगते, गोपियां और भी डर के मारे इधर उधर भाग जाती, क्योंकि ये बड़े गाय थे। जब श्री कृष्ण नंदगांव में रहते थे तो गाय बड़े थे, केवल जब वो गोकुल में रहा करते थे तो छोटे छोटे बछड़ों के साथ जाया करते थे। गोपियों को बछड़ों का कोई डर नहीं था, लेकिन अब गाय तो बड़े हो चुके थे, बड़े बड़े सींगे भी थी उनकी, और जब इस प्रकार से भागने लगती है गाय तो सभी लोग डर जाते हैं कहीं सींग न लग जाए। तो ऐसे लीलाएं श्री कृष्ण किया करते थे। तो गोपियां कहती है विविध गोप चरणेशु विदग्ध, कि आपके जो सुत आपके जो पुत्र हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े प्रवीण है वो, विविध प्रकार से कैसे गाय का देखरेख करना दोहन करना सब जानता है। और इतना ही नहीं वेणु वाद्य उरुधा निज शिक्षा, और वेणु वाद्य वेणु वेणु तो बजाता है, और वेणु बजाते बजाते उसने क्या किया है, उसने खोज निकाली है नई शैलियों का, बांसुरी बजाने की नई नई शैलियों का शोध किया है श्री कृष्ण ने तुम्हारे पुत्र ने, और फिर अपने बिंब सदृश होठों के ऊपर जो कि लाल रंग के हैं, बिंब फल होता है लाल रंग का, इसलिए श्री कृष्ण के अधरों की या होठों की तुलना बिंब से की गई है। तो वो कहते हैं कि जब उन बिंब सदृश लाल होठों पर वो अपनी बांसुरी रखते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो इस प्रकार से अनयत स्वर जाती ही, इस प्रकार के तान तानों में वो स्वर निकालते रहते हैं कि इसका असर देवलोक तक भी पहुंच जाता है। और ये जो तरह तरह के तान हैं जिनमें कि वो अलग अलग स्वर निकालते हैं अपने बांसुरी के द्वारा, वो स्वयं सीखे हुए हैं श्री कृष्ण, किसी ने सिखाए नहीं। और असर क्या होता है, तो वो कहती हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र और जितने भी प्रमुख देवता हैं वो बहुत मोहित हो जाते हैं ये सब सुनकर। वो निश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ये संगीत जो हम सुन रहे हैं इसका सार क्या है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं।
इसलिए केवल सिर तथा मन से नतमस्तक के हो जाते हैं,
क्योंकि और कोई चारा नहीं है उनके लिए। इंद्र के साथ में और हैं, जैसे उपेंद्र हैं, यमराज हैं, आदि देवता हैं। ब्रह्मा जी के साथ है नारद मुनि, चतुष्कुमार आदि। शिव जी के साथ में भी उनके पार्षद हैं, जैसे दुर्गा देवी हैं, स्कंद हैं, गणेश हैं। तो ये सारे देवता गण जब इस बांसुरी को सुनते हैं तो बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। इनको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये क्या आवाज है, कि कौन से राग में है, ये कौन सा ताल है, इतना मधुर है, किसी को पता नहीं चलता है। हालांकि ये बड़े बड़े विद्वान हैं, संगीत विशारद भी हैं, ये सब स्वयं शिव जी तो डमरू बजाते हैं, बड़े ताल से डमरू बजाते, लेकिन शिव जी की डमरू बंद हो जाती है। साथ साथ में चार कुमार जो हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है। कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अनंत शेष जिनके फणों पर अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित होते हैं, वो तो बिल्कुल झूमने लगते हैं इस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर। तुम्बुरु गंधर्व जो हैं वो भी अपना गीत गाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं प्रतिमा की तरह। तो ऐसे असर होता है। तो गोपियां कहना चाहती हैं, माता यशोदा से कि देखो, जब बड़े बड़े देवी देवता भी जैसे दुर्गा देवी, शिव जी इत्यादि ऐसे मोहित होते हैं तो इसका मतलब है कि ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हम जैसे साधारण व्यक्ति जो वृंदावन में रहते हैं, अवश्य हम तो मोहित होंगे ही। तो कृष्ण को साधारण नहीं समझना, वो अपनी रक्षा कर लेगा, कहने का तात्पर्य ये है। तो खैर, श्री कृष्ण की बांसुरी वदन का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी करते हैं, और उस समय वो इस श्लोक का उल्लेख करते हैं जिसको हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। और इसमें वो बताते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण की बांसुरी का वदन जो है ये इतना मीठा होता है कि भगवान नारायण भी बांसुरी को ऐसे नहीं बजा सकते हैं, बलराम जी भी नहीं बजा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं चैतन्य चरितामृत में, और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनगिनत गुण हैं, असंख्य गुणों से सुशोभित हैं श्री कृष्ण का चरित्र। फिर भी इनमें से संतों ने विश्लेषण, शास्त्रों का विश्लेषण करके 64 गुणों को चुना है। उनके जो 64 प्रमुख गुण हैं उनका उल्लेख चैतन्य महाप्रभु ने किया है, और श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में थोड़े विस्तार में इनका वर्णन किया है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये 64 गुण तो श्री कृष्ण में हैं, और क्योंकि जीव श्री कृष्ण का अंश है, ये सारे गुण जीव के अंदर भी हैं परंतु अणु मात्र। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवे श्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे। जीवेषु अपि वसंतोपि बिंदु बिंदु तया क्वचित। ये सारे 64 गुण जो हैं जीवों में भी निवास करते हैं, परंतु बिंदु बिंदु तया, कण मात्र, अणु मात्रा में वो विद्यमान रहते हैं जीवों में, और वो भी क्वचित, सदैव नहीं, कभी कभी कोई प्रकट होते हैं, परंतु परिपूर्णतया भाति तत्र एव पुरुषोत्तमे। परंतु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ये समस्त 64 गुण परिपूर्ण रूप में विद्यमान रहती हैं, और क्वचित नहीं, सदैव। ये है भगवान और जीव में अंतर। यहां तक कि गिरीश शिवजी, उनमें भी ये 64 गुण नहीं है, उनमें तो 55 गुण ही होते हैं, साधारण जीवों में तो 50 गुण से अधिक नहीं होते, शिवजी जैसे महान देवताओं में केवल 55 गुण होते हैं, परंतु ये 55 गुण भी अंशीन गिरीशादिशु, वो भी अंश मात्र होते हैं। और यहां तक कि जब हम नारायण भगवान की बात करते हैं उनमें तो 60 गुण हैं, 60 गुण भी परिपूर्ण मात्रा में हैं क्योंकि वो भगवान हैं। फिर भी जहां तक कृष्ण की बात आती है, रूप गोस्वामी कहते हैं एते कृष्ण किलाद्भुतः, ये सारे 60 गुण कृष्ण में भी हैं लेकिन और भी अद्भुत रूप से उनमें विद्यमान रहती हैं या दिखाई पड़ती हैं ये गुण। तो जो 60 गुण भगवान नारायण में हैं वो श्री कृष्ण में भी हैं, परंतु और भी अद्भुत रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण में और 4 गुण हैं जो कि नारायण भगवान में भी नहीं हैं, और ये 4 प्रकार की माधुरी या मिठास जो आप जानते हैं, लीला माधुरी, बहुत सुंदर वो मधुर लीला करते हैं, प्रेम माधुरी, सदैव अपने प्रिय भक्तों से घिरे हुए रहते हैं वो, साथ साथ में वेणु माधुरी, वो बांसुरी बजाते हैं, और फिर रूप माधुरी, उनका सौंदर्य बड़ा निराला है, बहुत विशेष माना जाता है। ये 4 ये गुण हैं ये नारायण भगवान में भी नहीं पाए जाते। तो वेणु माधुरी का वर्णन करते समय श्री रूप गोस्वामी युगल गीत के इस श्लोक का प्रमाण रखते हैं कि देखो भगवान कृष्ण के बांसुरी वदन से क्या असर पड़ता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण के वैसे 3 प्रकार के बांसुरी होते हैं, एक को कहते हैं वेणु, दूसरा है मुरली और तीसरा है वंशी। हैं तीनों बांसुरी लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर है। जो वेणु है वो सबसे छोटा होता है, 6 इंच से भी कम उसकी लंबाई होती है और इसके 6 छेद होते हैं। इससे बड़ा है मुरली जो 18 इंच लंबी है और इसमें 4 छेद होते हैं और बड़े मनमोहक ध्वनि इससे निकलती है। फिर साथ में वंशी जो 15 इंच लंबी है और उसमें 9 छेद हैं। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब यही वंशी और भी लंबी होती है तो उसे महानंद या सम्मोहिनी भी कहते हैं, और जब और भी लंबी होती है तो उसे आकर्षणी कहते हैं, और इससे भी अधिक लंबी जब होती है तो उसे आनंदिनी कहते हैं। और ये आनंदिनी जब भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं तो विशेष रूप से ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इसे वंशुली भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी जो वंशी है इसको वंशुली भी कहते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। कभी कभी ये बांसुरियां जो हैं ये रत्नों से अलंकृत होती हैं, उस समय उसे सम्मोहिनी कहते हैं, और कभी कभी सोने से भी अलंकृत होती हैं जिस समय उसे आकर्षणी कहते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी वंश से भी बनी हुई होती है, बांस से, इसलिए तो नाम आता है बांसुरी। और अपनी कुमार अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पन्नों से या पत्तों से बनाए हुए बांसुरी के ऊपर भी खेल किया करते थे। तो ये बांसुरी एक वदन भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, समझ लीजिए। आचार्य ने इतनी सब बातें बताई हैं केवल श्री कृष्ण के बांसुरी के संदर्भ में और उनके बांसुरी वदन के संबंध में। और आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ये विरोधाभासों का भंडार है। कैसे? देखिए बांसुरी में क्या होता है, बांसुरी में अनेक छेद होते हैं ना, जब छेद होता है तो ये एक दोष है। जैसे कोई व्यक्ति यदि तर्क कर रहा है
तो हम कहते हैं कि आपके तर्क में तो कई छेद हैं, हम छेद निकालेंगे आपके तर्क में, अर्थात हम दोष निकालेंगे। देखो आपने ऐसे कहा लेकिन बात तो ऐसे है। तो जहाँ छेद होते हैं तो वो दोष माना जाता है। परंतु विरोधाभास तो ये है कि बांसुरी में इतने सारे छेद हैं परंतु कोई भी दोष बांसुरी में नहीं है। एक पहला विरोधाभास है। दूसरा है कि ये बांसुरी है स्पर्श के लिए तो बहुत कठोर है, क्योंकि कभी रत्नों से बना हुआ होता है, कभी तरह तरह की चीजों से, परंतु सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देता है। ये दूसरा विरोधाभास बांसुरी का, देखिए चमत्कार। तीसरा है कि बांसुरी खाली है, खोखला, देखिए अंदर तो हवा है केवल, लेकिन इतना होने के बाद भी इसमें रागों की धारा भरी हुई है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो न जाने कहां से ऐसे रागों की तानों की धारा, निरंतर धारा बहने लगती है, जो कि ब्रह्मांड के आवरण का भेद करके भी भगवान के धाम में चली जाती है। और एक विरोधाभास ये है, कवि कर्णपुर जी बताते हैं कि बांसुरी बांस के एक वृक्ष से बनी हुई होती है, वृक्ष के किसी एक भाग से, भाग को पर्व भी कहते हैं, तो वृक्ष के एक पर्व से बनाई होती बनी जाती है ये बांसुरी। परंतु फिर भी ये अनेक पर्वाणी पर्वों के कारण हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो पर्व या उत्सव हो जाता है। पर्व जानते हैं ना, पर्व, पर्व मतलब उत्सव। तो जब श्री कृष्ण ये पर्व से निकले हुए बांसुरी को बजाते हैं तो तरह तरह के पर्व हो जाते हैं, पर्वाणी, क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन मात्र एक उत्सव है। और श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ये एक महामहोत्सव हो जाता है। तो वृंदावन में तो प्रतिदिन ये महामहोत्सव हुआ करता था। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या सौभाग्य वृंदावन के निवासियों का था। तो भगवान श्री कृष्ण जब गायों को पुकारते थे दोपहर के समय, तो वो राग मल्हार में गाया करते थे। राग मल्हार का नाम तो आपने सुना होगा। राग मल्हार विशेष करके वर्षा को आकर्षित के लिए गाया जाता है। तानसेन के बारे में आपने सुना होगा। तानसेन ने एक राग गाया था जिससे दीप प्रज्वलित हो गए थे और इतनी गर्मी पैदा हो गई कि उनको बुखार आ गया। फिर उन्होंने अपने पुत्री से कहा कि राग मल्हार गाओ और मेरे ज्वर को, मेरे बुखार को कम कर दो। तो उनकी पुत्री ने राग मल्हार गाया जिससे कि वर्षा हुई, ठंडक पहुंच गई सारे वातावरण में, दीप बुझ गए और तानसेन का बुखार भी मिट गया। तो राग मल्हार भी श्री कृष्ण इस राग में बांसुरी बजाते हैं जब बहुत गर्मी होती है, ताकि वातावरण में ठंडक पहुंच जाए। तो हम प्रयास करेंगे थोड़ा राग मल्हार गाने के लिए। हम गायक तो नहीं हैं, तो आप क्षमा करें, आप में से कोई शास्त्रीय संगीत में प्रवीण है तो पहले से ही हम क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। हम ये अधरम मधुरम वदनम मधुरम गाएंगे, ठीक है, मधुराष्टकम। पीछे भी थोड़ा दीजिए है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
अधरम मधुरम वदनम
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पातो मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरम् भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मथुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम हृष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी के?
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
बहुत से आदमी एक बात बोलते हैं कि शिव जी सबसे बड़ा है, कृष्ण उससे नीचे है, विष्णु और भी ऊपर है, तो उसको बराबर जवाब देना मुश्किल हो जाता। मैं बोलता हूँ लेकिन सुनते नहीं, कैसे कन्विंस किया जाए शिव देवता है, ये भगवान नहीं है? नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं, शिव सबसे बड़ा है, तो हाउ टू कन्विंस?
पहली बात यह है, झगड़ा नहीं करके। झगड़ा करेंगे तो मानने वाले भी नहीं मानेंगे। जो सुनने के लिए तैयार हैं उनको शास्त्रों से बता सकते हैं धीरे 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 से, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा कुछ पढ़ना होगा, कुछ श्लोक कंठस्थ करने होंगे, फिर उनको हम सुना पाएंगे। जैसे भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, कि अन्य समस्त जितने भी भगवान के रूप हैं वो सब अवतार माने जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। स्वयं शब्द का तात्पर्य यहाँ ये है कि वो मूल भगवान हैं, जिनसे भगवान के अन्य रूप प्रकट होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ही आदि पुरुष स्वयं भगवान है। तो विषय बड़ा है, इसलिए उनको धीरे धीरे से हम बता सकते हैं, उनको प्रभुपाद जी के पुस्तक दे सकते हैं, उनको सत्संग में बुला सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे से भगवान की कृपा से वो समझ आ जाएगी। मधुराधिपतेरखिलं मधुमंगल ने वसंत ऋतु में कौन सी लीला की थी? ये तो बहुत लीला के लिए वर्णन के लिए समय लगेगा, अभी नहीं और कभी वसंत ऋतु में इसका। अभी शरद ऋतु आ रही है धीरे धीरे, इसके बाद तो आएगी शरद। मायापुर और जगन्नाथपुरी है दो, ये दोनों धाम गोलोक में हैं या अलग हैं? नवद्वीप भी गोलोक का ही के बाहर ही है, जैसे यहाँ से समझ लीजिए बेलगांव के बाहर मच्छे है कुछ है ना, ऐसे बस गोलोक का हिस्सा ही समझ लीजिए। पुरी भी धाम है भगवान का अवश्य। भगवान को माता पिता स्वीकार करने के पहले भगवान अकेले थे क्या? ये प्रश्न है। नहीं, भगवान के धाम में निरंतर उनके माता पिता उनके साथ में रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई समय है जिस पर उन्होंने उनको स्वीकार किया, सदैव वो उनके माता पिता हैं। ठीक है, हाँ कोई सूचनाएं हैं अभी?
हरे कृष्णा, तो आपका एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए।